लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम कलीसिया के परमाध्यक्ष संत पापा फ्रांसिस के लिए याचना करते हैं, ताकि वे अपने प्रेरितिक मिशन के संपादन के साथ साथ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उनके सिपुर्द किए गए रेवड़ के संग संग चलना जारी रखें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और जूलियट क्रिस्टोफर।
पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। खरीददार कहता है यह चीज रद्दी है रद्दी है, किंतु वह माल ले जाकर अपनी खरीद की शेखी मारता है। सोना और मोती बहुत मिलते हैं, किंतु ज्ञान पूर्ण बातें सर्वोत्तम हैं। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 20वें अध्याय के 14वें और 15वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम हमने इन्हीं पदों की व्याख्या से समाप्त किया था। इस बात की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि सौदेबाजी के खेल और प्रतिस्पर्धा में खरीदार हमेशा विक्रेता से बेहतर कीमत पाने की उम्मीद में जो खरीदना चाहता है उसके बारे में कम ही बोलता है। यह उस युग की सामान्य प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है जहां कीमतों के लिए सौदेबाजी आम थी। हालांकि खरीदार के सौदेबाजी वाले शब्द खोखले होते हैं, वे केवल बातचीत की रणनीति हुआ करते हैं। यह सूक्ति हमें याद दिलाती है कि लोग जो कहते हैं वह हमेशा वैसा नहीं होता जिस पर वे विश्वास करते हैं, और यह कि प्रायः लोग अपने फायदे के लिए झूठ भी बोल देते हैं। 15वें पद में लेखक कहता है कि दुनिया में सोना और मोती सर्वत्र पाए जाते हैं, किंतु ज्ञान पूर्ण बातें उन बहुमूल्य रत्नों से कहीं अधिक बेहतर हैं। राजा सुलेमान बहुमूल्य सोना और माणिक का दृश्य प्रस्तुत कर हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हैं कि सोना और मोती पाने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता, किंतु ज्ञान के आगे यह सब गौण है, निम्न है, कुछ भी नहीं है। ज्ञान के होठों से अनमोल रत्न निकलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो कुछ बोलता है वह सोने और मोती से सर्वोत्तम है। इसलिए हम सोने और मोती के पीछे न भागें, बल्कि ज्ञान अर्जन का प्रयास करें। आगे सूक्ति ग्रंथ के 20वें अध्याय के 16वें पद में सूक्ति ग्रंथ का लेखक चेतावनी देता है। श्रोताओं, बाइबल धर्म ग्रंथ में बारंबार अजनबी को आतिथ्य प्रदान करने पर बल दिया गया है, तथापि अपरिचित व्यक्ति के व्यवहार के प्रति भी सावधान किया गया है। अपरिचित की जांच परख कर लेने के उपरांत ही उसके विषय में गारंटी लेना चाहिए। लेखक कहता है, जो अपरिचित व्यक्ति की जमानत देता उसका वस्त्र ले लो, जो अपरिचित नारी की जिम्मेदारी लेता उसे बंधक रखो। यहाँ मनुष्यों की नादानी की ओर सचेत कराया गया है। निर्गमन ग्रंथ में कहा गया है कि इजरायली व्यक्ति किसी के बाहरी वस्त्र को जमा राशि या ऋण की गारंटी रूप में ले सकता है, जब तक कि ऋणी इसे वापस न कर दे। यहाँ राजा सुलेमान की सलाह यह है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ऋण देते हैं जो पहले से ही मूर्खता पूर्वक किसी अजनबी के लिए जमानत दे चुका है, तो सुनिश्चित करें कि आपको जमा राशि और गारंटी वापस मिल सके। वस्तुतः उसका वस्त्र ले लो वाक्यांश से तात्पर्य यही कि फला व्यक्ति के लिए कोई जोखिम मत उठाओ, कहीं ऐसा न हो कि ऐसा करते आप खुद मुसीबत में पड़ जाएं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विचार अनुबंधित समुदाय के बाहर के किसी व्यक्ति पर केंद्रित है। जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं उसे ऋण देने अथवा उसकी गारंटी लेने से पहले अधिक सुरक्षा की मांग करना उचित ही है।
उठ जाग मुसाफिर चेतन हो, अब रैन कहाँ जो सोता है।
सूक्ति ग्रंथ का लेखक आगे 20वें अध्याय के 17 से लेकर 19 तक के पदों में अपने परामर्शों को जारी रखते हुए कहता है, झूठ की रोटी भले ही किसी को मीठी लगे किंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ से भरा होता है। सोच विचार के बाद की योजनाएं सफल हो जाती हैं। सत परामर्श लेकर ही युद्ध करो। जो गुप्त बातें प्रकट करता है वह विश्वासघाती है, इसलिए गप्पी की संगति मत करो। श्रोताओ, पाप झूठ और बुराई संभवतः सुखद हो सकती हैं। छल की रोटी, धोखाधड़ी, झूठ और उत्पीड़न से प्राप्त धन मीठा लग सकता है और इसके गलत तरीके से प्राप्त होने के कारण और भी अधिक मीठा होता है। दुष्ट परियोजनाओं की सफलता का आनंद दैहिक मन को पसंद होता है, किंतु पाप के सारे सुख और लाभ धोखे की रोटी हैं। वे चोरी हैं, वर्जित फल हैं और वे मनुष्य को धोखा देंगे, क्योंकि वे वैसे नहीं होते जैसा कि वे वादा करते हैं। हालांकि कुछ समय के लिए वे जीभ के नीचे मीठे निवाले के रूप में लुढ़क जाते हैं और पापी उन्हें खुद के लिए एक आशीर्वाद समझ बैठता है, लेकिन वह उसका भ्रम होता है। सोच विचार और चिंतन के बाद ही व्यक्ति को एहसास होता है कि जिसे वह मीठा समझ रहा था वह वास्तव में कड़वा यानी कि मुंह में कंकड़ या बजरी जैसा है। जब उसका विवेक जागृत होता है तब वह स्वयं को ठगा हुआ पाता है और वह अपने पाप के लिए अपने विरुद्ध ईश्वर के क्रोध से आशंकित हो उठता है। तो यह विचार कितना दर्दनाक और बेचैन करने वाला होता है। अस्तु, सूक्ति ग्रंथ का लेखक सावधान करता है कि पाप का सुख केवल क्षणिक है, बाद में केवल दुख ही दुख होता है। तदुपरांत 18वें पद में राष्ट्रों को परामर्श दिया गया है, वे व्यर्थ ही युद्ध न छेड़ें, हर मामले में विचार विमर्श के साथ काम करें और निर्णय लेने से पहले कम से कम खुद से और क्षणिक मामलों में अपने दोस्तों से भी परामर्श करें। इससे भी अधिक जरूरी है ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखना, ईश्वर से सलाह मांगना और उनसे दिशा निर्देश मांगना। यही हमारे दिमाग और हमारे उद्देश्यों को स्थापित करने और हमारे मामलों में अच्छी तरह से सफल होने का तरीका है। जबकि जो काम जल्दबाजी में किया जाता है उसके लिए बाद में पछताना पड़ता है। समय लीजिए, सोच विचार कर सलाह मशवरा कर ही किसी काम को शुरू करें। किसी के विरुद्ध झगड़ा छेड़ने में यही बात सामने आती है, फिजूल में झगड़ा न करें। राष्ट्रों को परामर्श दिया गया है कि वे युद्ध छेड़ने से पहले पूरी स्थिति को परख लें और किसी ठोस कारण बिना कुछ ऐसा न करें जिससे नागरिकों को कष्ट भोगना पड़े। फिर उस व्यक्ति से भी सावधान किया गया है जो बातों को गुप्त रखने में सक्षम नहीं, क्योंकि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उस व्यक्ति की संगति से दूर रहा जाए। श्रोताओं, वस्तुतः उक्त पदों में युद्ध की नाकामी के प्रति ध्यान आकर्षित कराते हुए लेखक कहता है कि युद्ध करते समय सतर्क रहना हमारी बुद्धिमता है। विचार करें और सलाह लें कि क्या युद्ध शुरू किया जाना चाहिए या नहीं, क्या यह न्यायपूर्ण होगा, क्या यह विवेकपूर्ण होगा, क्या हम दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। संत लुकस रचित सुसमाचार में भी प्रभु येसु युद्ध करने वाले राजा का दृष्टांत देते हैं। इसके 14वें अध्याय के 31वें पद में हम पढ़ते हैं, कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार न करे कि जो 20,000 की फौज लेकर उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वह 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकेगा।
उठ जाग मुसाफिर चेतन हो, अब रैन कहा जो सो।
आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने प्रेरित संत अंद्रेस के पर्व दिवस के अवसर पर प्राधि धर्माध्यक्ष बर्थोलोमियो को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। संत पापा ने अपनी शुभकामना में कहा कि मैं प्रेरित संत अंद्रेस के इस पर्व दिवस के अवसर पर, जो कॉन्स्टेंटिनोपल कलिसिया और प्राधि धर्माध्यक्ष के संरक्षक हैं, आपकी धर्म सभा कलिसिया के पुरोहितों, धर्म बहनों और सभी विश्वासियों को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, जो इस पवित्र अवसर पर संत जॉर्ज के पितृ सत्तात्मक महागिरजाघर में धर्म विधि हेतु जमा होते हैं। संत पापा ने कहा, आज का त्योहार वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना की याद दिलाती है, जहां सन 1964 के जनवरी में प्राधि धर्माध्यक्ष एथेन गोरस और संत पापा पॉल छाटवियों के बीच यरूशलेम में एक बैठक हुई थी। वह मुलाकात लगभग एक सहस्रशताब्दी से चली आ रही गलतफहमी, अविश्वास और यहां तक कि शत्रुता की बाधा को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। यह उल्लेखनीय है कि आज हम उन दो भविष्य वक्ताओं के शब्दों और कथन को उतना याद नहीं करते हैं, जितना कि उनके गर्म जोशी भरे आलिंगन को। वास्तव में उस मिलन का प्रभाव आज भी हमारे बीच में मेल मिलाप, आपसे निकटता और बाधाओं के निवारण में दृश्यमान है, जो एक आलिंगन से शुरू हुई थी। यह हमारे लिए कलिसियाई भाईचारे की पारस्परिक मान्यता को स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है। संत पापा फ्रांसिस ने प्राधि धर्माध्यक्ष बर्थोलोमियो के प्रति अपने कृतज्ञता के भाव प्रकट किए, जब उन्होंने हाल ही में रोम में संपन्न हुई धर्माध्यक्षकों की धर्म सभा के दौरान एकतावर्धक धार्मिक वार्ता की प्रार्थना सभा में अपनी उपस्थिति दी थी। आपका हमारे संग होना कैथोलिक कलीसिया में चल रही धर्म सभा प्रक्रिया को फलित बनाने में निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करता है। संत पापा फ्रांसिस ने वैटिकन के प्रेरितिक आवास में अंतर्राष्ट्रीय धर्म शास्त्र आयोग के सदस्यों से भेंट की और उन्हें अपने संदेश में कहा, कलिसिया एक नारी है और हमें इसे पुरुष बनाकर एक बड़ा पाप किया है। हमें इसे पुरुष विहीन करने की आवश्यकता है और हम इसे ईश शास्त्र से शुरू कर सकते हैं। संत पापा ने कहा, आज हम कलिसिया की प्रेरिताई के संबंध में रूपांतरण लाते हुए पूरे दिल और दिमाग की पूरी ऊर्जा के साथ स्वयं को अर्पित करने हेतु बुलाए गए हैं। यह सुसमाचार प्रचार के लिए यीशु के आह्वान का प्रत्युत्तर है, जिसे वैटिकन परिषद ने अपना बनाया और जो अब भी हमारी कलीसियाई यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करती है। उन्होंने आगे कहा, अंतर्राष्ट्रीय धर्मशास्त्र आयोग को सोचने का एक तरीका खोजने के लिए नेतृत्व करने का बुलावा मिला है, जो ईश्वरीय सच्चाई को दृढ़ता से साझा करना जानती है। उन्होंने कहा, धर्म शास्त्रियों को कलीसिया के घर और दुनिया के अंधेरे में ख्रिस्त की दिव्य रोशनी को नए और आश्चर्यजनक रूप में फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार को स्वास्थ्य प्रबंधन में नैतिकता पर हुए एक कार्यशाला के प्रतिभागियों से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में जिक्र करते हुए स्वास्थ्य की देखरेख करने का आह्वान किया। संत पापा ने हमेशा की तरह मजाकी लिहाज में कहा, जैसे कि आप सभी देखते हैं मैं जिंदा हूँ। चिकित्सकों ने मुझे दुबई जाने नहीं दिया क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी है और गर्मी से वातानुकूलित स्थिति में रहना श्वासनी के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा, न केवल चिकित्सा और औषधीय समाधान तलाशना बल्कि स्वास्थ्य की देखभाल करना, स्वास्थ्य की भलाई के बारे में सोचना और उसे अच्छी तरह सुरक्षित रखना, हमें इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। हमें सिर्फ इलाज नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य की देखरेख भी करनी है। संत पापा शनिवार से फेफड़े की सूजन से उबर रहे हैं। फ्लू के लक्षण पाए जाने पर उसकी सही आंकलन हेतु उनका सीटी स्कैन कराया गया था। वे 1-3 दिसंबर को COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई की प्रेरित यात्रा करने वाले थे, लेकिन अपने चिकित्सकों की सलाह पर उन्होंने मंगलवार शाम को अपनी यात्रा रद्द कर दी। संत पापा फ्रांसिस ने संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में विश्व युवा दिवस लिस्बन 2023 सम्मेलन के करीबन 800 सदस्यों से मुलाकात की और उनके सुंदर कार्यों के लिए उनका धन्यवाद अदा किया। उन्होंने अगस्त में हुए युवा कार्यक्रम को सुसमाचार का मजबूत प्रचार, खुशी और युवा अभिव्यक्ति का केंद्र घोषित किया। उन्होंने कहा कि लिस्बन का युवा मिलन मेरे मन में एक महान अनुभव रहा है। मेरे पास अब भी 96 वर्षीय महिला की एक माला है, क्या वह अब भी जीवित है? संत पापा ने सारी चीजों के लिए अपने खुशी के भाव व्यक्त करते हुए उन्हें कहा, कई लोगों की मदद से और ईश्वर की बहुमूल्य कृपा से मजबूत आपने हमें निराश नहीं किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह समिति और सम्मेलन के सदस्यों ने प्रत्येक की प्रतिभा को निखारने, उन्हें आत्मविश्वास के साथ बढ़ने, एक महान सपने को साझा करने में एक दूसरे की मदद की है। उन्होंने यीशु का उदाहरण देते हुए कहा, वे हमारी ओर देखते हैं और हमें वापस जाकर फसल की बालियों को जमा करने को कहते हैं जो खेतों में छूटी हुई हैं, जिसे हम पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें जो विश्व की मुक्ति चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम किसी भी चीज को ना खोएं जो हमें विश्व युवा दिवस में मिला है। वे चीजें हमारे हाथों में हैं जो बढ़ती, खिलती और फलदायक होती हैं। झारखंड की कलीसिया के लिए संत पापा फ्रांसिस ने 2 धर्माधीक्षकों की नियुक्ति की। रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करिनस डाल्टनगंज के धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो वहीं संत पापा ने लिनुस पिंगल एक्का को गुमला धर्म प्रांत का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।